प्रिय शिक्षार्थियों, श्रोताओं नमस्कार। आज हमारा जो पाठ है उसका नाम है आरोग्यम परमम सुखम। आरोग्यम परमम सुखम, इसका तात्पर्य होता है जो आरोग्य है, जो आपका स्वास्थ्य है, वही परम सुख है। कहा भी गया है कि जो जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप कुछ भी का अच्छा कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ होने का तात्पर्य यहाँ पे केवल भौतिक स्वस्थता से नहीं है, बल्कि मानसिक स्वस्थता, विचारों से भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो इस पाठ में हम चर्चा करेंगे जो आरोग्य है, उन किन किन बातों पर ध्यान दें कि हम हमारा शरीर आरोग्य रह सके, हम स्वस्थ रह सकें, और जो भी करने कार्य हैं। कहा भी गया है कि शरीरम इदु खलु धर्म साधनम, जो अगर आप कुछ भी ऐसा कार्य, लोक कल्याण का कार्य करना चाह रहे हैं, धर्म का कार्य करना चाह रहे हैं, तो उसे करने के लिए जो साधन रूपी आपका शरीर है उसका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि शरीर जब आपके पास, स्वस्थ शरीर आपके पास जब है तभी आप कोई भी कार्य कर पाने में संपन्न हो सकते हैं। तो जो आज का जो पाठ है शिक्षार्थियों, मुख्यतः जो संस्कृत साहित्य है, प्राचीन जो संस्कृत साहित्य, हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा रही है, उसमें जो आचार्य चरक हमारे वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा है, उनके कुछ विचार इस पाठ में दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से आरोग्य रहा जा सकता है, जो हमारे शरीर के विभिन्न इंद्रियां हैं, जो बाह्य इंद्रियां हैं, हमारे हाथ पैर नाक जो भी इंद्रियां हैं, इन सबको स्वस्थ कैसे रखें, किस तरह से इनकी केयर करें कि ये और भी अधिक स्वस्थ रहें, और हमारा शरीर बलवान और ऊर्जावान कैसे बना रहे। तो सबसे पहले मैं शिक्षार्थियों बताना चाहूँगा, जो चरक हैं इनको आयुर्वेद का जो प्राचीन विद्वान है, उनमें बहुत श्रेष्ठ विद्वान ये हैं, वैज्ञानिक ये रहे हैं, और इनकी काय चिकित्सा बहुत प्रमुख है प्राचीन काल में। और अगर हम समय की बात करें किस समय में चरक हुए हैं, तो राजा कनिष्क के समय में ये राजवैद्य के रूप में उनके दरबार में थे, और मूलतः ये गांधारवासी थे। इनका काल अगर हम समय हम देखें तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इनका काल है, चूंकि कनिष्क का जो शासन काल है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में है, और चूंकि ये उनके राजवैद्य थे तो इनका समय भी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के लगभग माना जाता है। जो प्राचीन हमारे वैज्ञानिक हैं उनके समय के विषय में, इनके विषय में प्राय इस तरह कहा जाता है कि माना जाता है, विभिन्न प्रमाणों के आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं कि उनका कार्य इस समय रहा होगा। तो चरक को अगर हम देखें तो उस समय के अनुसार भी अगर हम देखें तो जो चरक का जो यश था, मुनि चरक की जो प्रसिद्धि थी, वो केवल एक क्षेत्र विशेष में नहीं थी, बल्कि दूर दराज तक, जिसे आज हम कहते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, अगर उस रूप में भी कहा जाए तो उन जमानों में जिस कनिष्क के शासन में थे, तो केवल शासन की सीमाओं के मध्य ही नहीं बंधे हुए थे, बल्कि दूर दराज तक उनके यश की कीर्ति थी। और इनके विषय में कहा भी जाता है कि चरक है तो चिकित्सते है, और इनका जो ग्रंथ है चरक संहिता, ये एक आयुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। यह एक पहला हमारे जो ज्ञान परंपरा का इतिहास है उसमें यह पहला ग्रंथ है। ग्रंथ तो अनेक लिखे गए हैं, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में, एक पूर्ण ग्रंथ के रूप में जो काय चिकित्सा पर लिखा गया है, ऐसा पहला ग्रंथ हम इसे कह सकते हैं। तो शिक्षार्थियों, जो बातें चरक ने कही हैं उनमें से कुछ श्लोक के रूप में यहाँ पर हैं, जिनको हम देखते हैं क्या क्या स्वास्थ्य के बारे में किस तरह की बातें यहाँ कही गई हैं। तो प्रथम श्लोक शिक्षार्थियों हम लेते हैं, नित्यम स्नेह आद्र शीर्षः शिरः शूलं न जायते न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतन्ति चः। ये श्लोक है, इसमें बताया गया है कि जो मालिश करते हैं हम, तेल की जो मालिश करते हैं, उसके क्या क्या उपयोग हैं, और उससे किस तरह से हमारे जो इंद्रियां हैं, वो कौन सी इंद्रिय को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। तो शिक्षार्थियों सबसे पहले हम इसका अन्वय करते हैं। यह नित्यम शिरसि तेल मर्दनम करोति तस्य स्नेह आद्र शीर्षः शिरः शूलं न जायते तस्य न खालित्यम न पालित्यम न च तस्य केशा प्रपतन्ति ही। ये इस श्लोक का अन्वय हुआ शिक्षार्थियों। वो अगर हम इसकी व्याख्या देखें, इसका अर्थ देखें, तो इसकी व्याख्या है, यहाँ पर कहा है कि शिरः शूलं न जायते। शिरः शूलं किम, अर्थात शिरसी पीड़ा, सिर में जो दर्द होता है उसको शिरः शूलं यहाँ कहा गया है। कस्य शिरः शूलं न जायते, स्नेहेन तेलेन आद्र शिरः यस्य तस्य, स्नेह पूर्वक तेल से आद्रम शिरः यस्य, जो आद्र शिर है, मस्तक है, उसकी जो हम मालिश करते हैं तो उससे क्या होता है, शिरः शूलं न जायते, सिर में दर्द नहीं होता है। अर्थात यस्य शिरः नित्यम तेलेन मर्दितं भवति तस्य शिरः पीड़ा न जायते, अर्थात जो व्यक्ति नित्य रूप से, प्रतिदिन रूप से अपने सिर की तेल से मालिश करते हैं, उनके सिर में जो दर्द रहता है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिर की मालिश करने का बताया गया कि सिर की मालिश, सिर में जो पीड़ा रहती है, आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में माइग्रेन जैसी समस्याएं रहती हैं, अनेकों तरह की, और यहाँ साथ साथ ये भी है कि बहुत सारी अभी वर्तमान जो जीवन शैली है उसमें व्यक्ति बहुत तनावग्रस्त जो जीवन शैली एक तरह से जी रहा होता है उसके माध्यम से भी सिर में सूल होता है, पीड़ा होती है। तो अगर आप शांतिपूर्वक कहीं बैठ के इसी बहाने से कि हम सिर की मालिश करते हैं, शांतिपूर्वक कुछ समय के लिए बैठते हैं, वो सिर की मालिश करते हैं, तो न केवल मालिश से जो भौतिक बाह्य जो लाभ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसके अलावा कुछ समय के लिए इस बहाने से अगर आप कहीं बैठते हैं तो थोड़ा आपको मन को शांति भी मिलती है, तो वैसे भी जो तनाव जो आपका होता है वो थोड़ा कम होता है मालिश करने से। इस तरह से समय अगर आप देते हैं अपने आप को, तो यहाँ पर कहा गया कि तैले आर्द्रतया च पुनः किम किम न भवति। तो कहते हैं कि जब सिर की मालिश करते हैं तो सिर की पीड़ा तो दूर होती होती है, सिर का दर्द तो दूर होता ही होता है, और क्या क्या उसके फायदे हैं वो भी श्लोक में बताए गए हैं। न खालित्यम न पालित्यम न केशः प्रपतन्ति च। तो यहाँ पर खालित्यम का तात्पर्य होता है अगर हम कहीं शिक्षार्थी तो बाल रहित होना, जिसे इस समय की यह भी एक बड़ी समस्या है कि लोगों का जल्दी बाल उड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं या बाल टूट जाते हैं, ये एक सामान्य समस्याएं हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान में जो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट हैं जो इन दो बातों को लेके हैं, खालित्यम और पालित्यम, बालों का टूट जाना और बालों का झड़ना। तो इतनी सारी कंपनियां इस तरह से प्रोडक्ट ला रखी हैं सब मार्केट में, लेकिन अगर हमारे प्राचीन साहित्य की तरफ अगर हम ध्यान दें और उन बातों को अगर हम मानते हुए चलें, तो अगर हम प्रारंभ से ही प्रारंभिक हमारी बाल्यकाल अवस्था के बाद में जब भी हमारी समझदारी आती है तब से ही अगर हम इन बात को ध्यान दें, प्रतिदिन रूप से अपने सिर की मालिश करते रहें, तेल मर्दन करते रहें, तो जो आज की जो समस्याएं आती हैं बाद में, बालों का झड़ना, बालों का टूटना, ये धीरे धीरे स्वतः ही कम हो जाएगी, आएगी ही नहीं इस तरह की समस्याएं। तो यहाँ पर जो तीन बातें बताई गई हैं तेल मालिश करने से, नित्यम शनि आद्रम शीर्षह शीलह शिरह शूलम न जायते, न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतन्ति च। नित्य रूप से आद्र सिर की मालिश तेल से करने से सिर सुलम न जायते, सिर में जो दर्द होता है, सिर की जो पीड़ा होती है वो दूर हो जाता है। न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतन्ति च। खालित्यम अर्थात केश राहित्यम, जिसे हम गंजापन कहते हैं, तो सिर केश रहितम न भवति, तेल मर्दन करने से जो आपका सिर है वो केश रहित नहीं होता है, अर्थात गंजापन नहीं आता है, ये एक ये फायदा है। दूसरा है पालित्यम केशानाम श्वेत वर्णे परिवर्तनम, अर्थात केशा श्वेता न भवन्ति। पालित्यम का तात्पर्य शिक्षार्थ यहाँ पर है कि समय से पूर्व ही बालों का सफ़ेद हो जाना। हम देखते हैं कि यह भी वर्तमान जीवन से लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है, समस्याएं हैं। हम देखते हैं अभी युवा उम्र में ही बहुत सारे लोगों के सफ़ेद बाल आ जाते हैं, तो उसका भी समाधान यहाँ बताया गया कि अगर आप तेल मर्दन करते हैं तो बालों का जो श्वेत वर्ण होना है वो भी धीरे धीरे कम होता है, या फिर जिस उम्र में होना चाहिए उस उम्र से पहले नहीं होता है। तीसरा जो फायदा बताया है, केशानाम पतनम च न भवति ही, न केशा प्रपतन्ति च, अर्थात केशानाम पतनम न भवति, जो आपके बाल हैं वो टूटते हैं, जड़ से जो उखड़ जाते हैं बाल, तो उन पर भी रोक लगता है। अगर आप नियमित रूप से तेल मर्दन करते हैं तो आपके बालों का टूटना भी बंद हो जाता है, बालों का झड़ना भी बंद हो जाता है। तो इसका भाव अगर हम देखें शिक्षार्थियों, यह मनुष्य शिरसि तैलाभिषेचनम नित्यम करोति तस्य शिरसि पीड़ा न भवति ही, तस्य केशान वर्ण है कृष्ण एव वर्तते श्वेत न जायते, तस्य केशानाम पतनम अपि न जायते, अतः अस्माकं नित्यम शिरसि तैलाभ्यंगम करणीय। यहाँ पर भाव रूप में यही बात कही गई है कि जो मनुष्य सिर में तेल मालिश करते हैं, नित्य रूप से तेल मालिश करते हैं, उसके तस्य शिरसि पीड़ा न भवति, उसके सिर की पीड़ा दूर हो जाती है, नहीं होती है, और तस्य केशानाम वर्ण है कृष्ण ही वर्तते, उसके बालों का जो रंग है वो काला ही बना रहता है, श्वेत न जायते, सफ़ेद बाल नहीं होते हैं, तस्य केशानाम पतनम अपि न जायते, उसके बालों का जो पतन होता है, गिरते हैं बाल, वो भी नहीं होंगे, वो भी नहीं होते हैं, अतः अस्माकं नित्यं शिरसि तैलाभ्यंगं करणीय, इसलिए नित्य रूप से हमें हमेशा तेल की मालिश करनी चाहिए। तो बहुत ही कितनी बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्राचीन साहित्य में इस बात को ध्यान रखा गया और इस बात को सामने लाया गया कि नित्य रूप से हम हमारे सिर के तेल से मालिश करें, हमारे बालों में नित्य रूप से तेल की मालिश करें। तो जो आज की समस्या हम देख रहे हैं, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, जो ये श्लोक है शिक्षार्थियों, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया श्लोक है, और अगर आज हम देखें इसकी उपयोगिता, इसका महत्व, इसकी प्रासंगिकता आज अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि वस्तुतः वास्तव में ही बहुत अनेक लोगों की समस्याएं हैं, और समस्याएं अनेक लोगों की है, इसका इसका हम अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आप देखें तो आज की बाजार अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हुई हैं जो इन्हीं चीजों को, बालों को झड़ने से कैसे रोकें, बालों को टूटने से कैसे रोकें, सिर में दर्द हो रहा तो उसको कैसे रोकें, आपके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं तो उनको कैसे रोकें, इन सब समस्याओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो रखी हैं, बड़े बड़े जो सामान है उत्पाद हैं बाजार में उपलब्ध होते हैं। इसका तात्पर्य ये है शिक्षार्थियों को, अगर समय रहते हम ध्यान दें, समय रहते हम इन चीज़ों को ध्यान दें, हमारी ज्ञान परंपरा में जो बातें कही गई हैं उनको हम मनन करें, उन पर ध्यान दें, तो ये जो समस्याएं जो बाद में आके खड़ी होती हैं कभी होंगी ही नहीं। ये इसका तात्पर्य यही भी है शिक्षार्थियों कि अभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो साहित्य है साहित्य से दूरी बना रहे हैं, पढ़ने का शौक कम कर रहे हैं, केवल दृश्यपूर्वक चीज़ों में ही जा रहे हैं। तो हमेशा जहाँ भी जो ज्ञान उपलब्ध है, अखबार पढ़ना है, पत्रिकाएं पढ़नी है, प्राचीन जो ग्रंथ है उनको पढ़ना है, जो भी अच्छे लेखक हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़ना चाहिए, या फिर अगर दृश्य रूप में भी हम देखें तो बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो इन बातों पे होते हैं, उनको भी हम देखें, उनसे हम सीखें। तो जहाँ से भी जो ज्ञान के स्रोत हैं, जो भी स्रोत ज्ञान के हैं, वहाँ से जो करणीय चीज़ें हैं, जो अनुकरणीय चीज़ें हैं, जो चीज़ें हम लाभदायक हैं, जो चीज़ें हमारी व्यक्तित्व में विकास करती हैं, हमारे भौतिक सुख को बढ़ाती हैं, हमारे आरोग्य शरीर का जो निरोगपन है उसको बरकरार रखती हैं या उसमें उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसी बातों को हमें सुनना चाहिए और शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया, अगर इस जीवन में पहला कोई सुख है तो निरोगी काया, रोग रहित शरीर ही प्रथम सुख है। क्योंकि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई धर्म का कार्य करना चाहते हैं, कोई स्वार्थ के लिए, स्वार्थ, स्वार्थ का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं है, लालच में नहीं है, स्वयं के लिए जो कोई कार्य करना चाह रहे हैं, किसी अन्य के लिए कोई कार्य करना चाह रहे हैं, उपकार के लिए करना चाह रहे हैं या अपने जीवन यापन के लिए करना चाह रहे हैं, तो किसी भी कार्य करने के लिए सर्वप्रथम आपका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आपका जो भौतिक शरीर है इसके स्वास्थ्य के साथ साथ आपका जो मनो शरीर है, मनोमय जो शरीर है, उनका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है शिक्षार्थियों। तो ये प्रथम श्लोक था शिक्षार्थियों। दूसरा श्लोक हम देखते हैं, दूसरे श्लोक में कहा गया है कि बलम सिर है कपाला नाम विशेषेण अभिवर्धते ही दृढ़ मूल च दीर्घ च कृष्ण केश भवन्ति ही। बलम सिर है कपाला नाम विशेषेण अभिवर्धते दृढ़ मूल च दीर्घ च कृष्ण केश भवन्ति ही। ये दूसरा श्लोक है शिक्षार्थियों। इसका अन्वय अगर हम देखें तो शिरसी तैल मर्दनेन सिर है कपाला नाम बलम विशेषेण अभिवर्धते ही केश दृढ़ मूलम दीर्घ कृष्ण च भवन्ति। इस श्लोक में भी शिक्षार्थियों जो तेल मर्दन है, जो तेल की मालिश करना है सिर में, उसी का महत्व इसमें आगे बताया गया है कि और क्या क्या उसका महत्व है। यहाँ पर प्रथम श्लोक में बताया गया था कि जो समस्याएं हैं, बालों का झड़ना है, बालों का गिरना है, समय पूरे बालों का श्वेत होना है, ये समस्याएं बताई गई थी, सिर में दर्द है। प्रथम श्लोक में उन समस्याओं के बारे में बताया गया था, उनका उपाय के रूप में तेल मर्दन को लिया गया था। आगे का श्लोक है इसमें जो तेल मर्दन है उसकी क्या क्या और उपयोगिताएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर अगर हम व्याख्या देखें शिक्षार्थियों, हूँ सिर है कपाला के शीर्ष अस्थिन ही, शीर्षी तैला अभ्यंगेन किम वर्धते शीर्ष अस्थनाम शक्ति नूनम तैलाभ्यंगेन वर्धते। के दृढ़ मूला भवंती केशा, केशा नाम मूलानी तेलेन दृढ़ानि भवंती ही, एवं ही तैलाभ्यंगेन केशा कीदृशा भवंती ही दीर्घ कृष्ण श्याम वर्ण दृढ़ मूलाश्च भवंती ही। अर्थात यहाँ कहा गया है कि जो सिर में तेल मालिश करते हैं तो जो हमारा कपाल है, सिरसी तेल मर्दन, सिर में तेल मर्दन करने से, तेल का मालिश करने से जो सिर का कपाल है वो बलवान होता है, उसके उसके बल में वृद्धि होती है। विशेषण के रूप में कहा गया है यहाँ पे बलम विशेषण अभिवर्धते विशेष रूप से, अर्थात सिरसी तेल प्रयोगेण सिर स्थानाम शक्ति वर्धते, जो स्थानाम है जो आपका कपाल है उसकी शक्ति बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह भी है शिक्षार्थियों कि जो आपका जो मस्तिष्क है वो अधिक क्रियाशील होता है। बहुत बार आप देखते हैं कि आप कभी कभी कुछ कार्य कर रहे होते हैं, थोड़ा सा आलस आता है, बैठ जाते हैं या थक जाते हैं, और अगर आप सिर में मालिश करते हैं तो फिर से सिर में जो तेल मर्दन करते हैं तो फिर से आप देखेंगे कि सिर में तेल मर्दन करने के बाद में फिर से आप एक्टिव हो जाते हैं, फिर से आप सक्रिय हो जाते हैं और फिर से आप में एक नई ऊर्जा आती है। तो यहाँ यही कहा गया है कि सिरसी तेल प्रयोगेण सिर में तेल के प्रयोग से, अर्थात तेल की मालिश करने से ही अस्थानाम शक्ति वर्धते ही, जो आपकी कपाल है, जो आपका कपाल है उसकी शक्ति बढ़ती है, कपाला नाम विशेषण अभिवर्धते ही। कपाला नाम अभिशेषण का तात्पर्य शिक्षार्थी यहाँ पर यह है कि जो आपका मस्तिष्क है उसकी क्रियाशीलता से यहाँ पे अर्थ लिया गया है कि आपका जो मस्तिष्क है वो अधिक क्रियाशील हो जाता है, आप अधिक विचारवान हो जाते हैं, आप में वापस सक्रियता आ जाती है, आप में जो आलस के तत्व हैं, अलसस्य जो तत्व है आप में, वो दूर हो जाता है। केसा नाम मूलानी सुदृढ़ानी भवंती, और क्या फायदा यहाँ बताया गया शिक्षार्थियों, के दृढ़ मूला भवंती केसहा, तो सिरसी तेल मर्दन, सिर में तेल का मर्दन करने से और क्या होता है, जो आपके बाल हैं उनकी जो जड़ें हैं वो तेल के अभिसंचन से मजबूत होती हैं, अर्थात बाल मजबूत होते हैं। जब आप तेल की मालिश करते हैं तो तेल जो बालों को जड़ों में जाता है तो आपकी जो बालों की जड़ें हैं उनको भी मजबूत करता है। तो मालिश करने का एक फायदा ये भी हुआ शिक्षार्थियों की, एक तो आपके बाल टूटेंगे नहीं, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, झड़ेंगे नहीं, दूसरा ये भी है कि आपके बाल मजबूत भी होंगे। जो बाल हैं, जिस तरह के बाल आपके थिन हैं, पतले हैं, जो टूट टूट जाते हैं, तो उनमें इतनी मजबूती आएगी कि इस तरह की चीज़ें होंगी ही नहीं। इसलिए भी केश मर्दन का जो तेल की जो मालिश है उसका ये भी फायदा है कि आपके बालों को वो मजबूती प्रदान करता है। एवं ही तैला व्यंग्येन केशा कीदृश बहुंती दीर्घा कृष्णा श्याम वर्णा दृढ़मूलाश बहुंती। और दूसरी बात है, ऐसा भी होता है कि हमारे सिर में हम देखते हैं कि बाल बहुत छीदे हो जाते हैं, बहुत कम बाल रह जाते हैं, तो यहाँ पे यह भी बताया गया है तेल मालिश का फायदा कि आपके बाल हैं वो घने हो जाएंगे। अगर आप नियमित रूप से तेल की मालिश करते हैं तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके बाल घने हो जाते हैं, पहले जो जितने अल्प बाल थे या फिर बहुत छीदे बाल थे, बहुत कम बाल थे, बहुत बालों की जो सघनता है बहुत कम थी, डेंसिटी कम थी, वो सघनता भी धीरे धीरे बढ़ती है अगर समय रहते आप ये प्रतिदिन मालिश का कार्य शुरू करते हैं तो। साथ में कृष्णा भवंती, जो बाल हैं वो काले हो जाते हैं, अगर आपके बाल बहुत श्याम वर्ण के नहीं हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप मालिश करते हैं तो आपके बाल हमेशा तेल मालिश करने से हमेशा कृष्ण वर्ण के बने भी रहेंगे, और अगर हैं भी नहीं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बाल धीरे धीरे घने और काले होते जा रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से शिक्षार्थियों बालों की ये जो तेल मर्दन की जो विशेषता बताई गई है यहाँ पे, प्रथम श्लोक में बताया शिक्षार्थियों सिर की पीड़ा दूर होती है। अगर हम संक्षेप में देखें कि तेल मर्दन से क्या क्या फायदे हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि सिर की मालिश करने से सिर का दर्द दूर होता है, सिर में जो बाल कम रहते हैं, केश सहित जो सिर होता है वो नहीं हो पाता है, पालित्यम जो आपके बाल हैं वो श्वेत वर्ण के नहीं होते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं, और आपके बाल हैं वो झड़ते कम हैं, दूसरा है कि आपके जो सिर की जो शक्ति है, जो कपाल की जो शक्ति है वो बढ़ती है, अर्थात आपके जो मस्तिष्क अधिक क्रियाशील हो जाता है, आपके बालों की जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं, और आपके बाल हैं बहुत ही घने हो जाते हैं। साथ में ही आपके बाल अगर बहुत काले भी नहीं हैं, बहुत काले भी नहीं हैं, तो धीरे धीरे कृष्ण वर्ण के होने लगते हैं, काले होने लगते हैं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं तेल मर्दन की यहाँ बताई गई हैं शिक्षार्थियों। आगे का जो श्लोक है उसमें भी तेल जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें जो तेल मालिश हम करें, बाह्य इंद्रियां हैं उनमें भी उनका फायदा बताए गए हैं। तो आगे का हम श्लोक लेते हैं शिक्षार्थियों। न च अस्य कंठशोषः स्यात् न ओष्ठयो स्फुटनात् वयम्, न च दन्तक्षयम् यान्ति दृढ़मूला भवन्ति च। इसका शिक्षार्थियों अगर अन्वय करें, अस्य का तात्पर्य शिक्षार्थी यहाँ पर है नरस्य है। न च कंठशोषः स्यात् न ओष्ठयो स्फुटनात् वयम् दंता च क्षयम् न यान्ति दृढ़मूला च भवन्ति। नरस्य कंठ केन न शुष्यति, जो व्यक्ति विशेष हैं उनका जो कंठ है वो शुष्क नहीं होता है, किससे, तेला भंगेन। तेला भंगेन कस्मात् भया नास्ति ही ओष्ठियो स्फुटनात्, तेला मर्दनेन केक्षे नाशम न यान्ति दंतः, अर्थात दंतेषु ओष्ठयो कंठे च तेल मर्दनम करनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि तेल मर्दन केवल सिर में ही नहीं बल्कि दांतों पर, आपके होठों पर और आपके गले पर भी तेल का मालिश करनी चाहिए। तो प्रथम दो श्लोकों में शिक्षार्थियों बताया कि सिर में जो मालिश उसके फायदे बताए हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो कभी कभी हम देखते हैं शिक्षार्थी जो हमारा कंठ है वो रुक्ष हो जाता है, कंठशोष हो जाता है, तो यहाँ कहा गया है कि न च अस्य कंठशोषात् न ओष्ठ स्फुटनात् से। और बहुत बार हम देखते हैं कि कंठ तो शुष्क होता ही होता है, हमारे होठ फट जाते हैं बहुत बार, और कम उम्र में ही समय से पूर्व ही बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों के दांत टूटने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, अक्षय को प्राप्त होते हैं, टूटते भी नहीं हैं पूर्ण रूप से तो, लेकिन वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, या वो थोड़े क्षय को प्राप्त करने लगते हैं। तो यहाँ भी कहा गया कि अगर तेल की मालिश यहाँ भी करें, कहाँ कहाँ पर, कंठ में और आपके होठों पर और आपके दांतों पर, तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं, आपका जो कंठ है वो शुष्क नहीं होता है, आपके जो होठ हैं जो फटते रहते हैं, अगर आप नित्य रूप से तेल लगाते हैं, तेल की मालिश करते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं शिक्षार्थियों, अगर यहाँ भी अगर वर्तमान में देखें तो बहुत सारे बाजार में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लिप्स गार्ड के रूप में बहुत सारे आए हुए हैं, लिप्स पे लोग उनको लगाने के लिए खरीदते हैं, तेल फट होठ जब फट जाते हैं तो हमको क्रीम लेके आते हैं बाजार से। लेकिन हमारे साहित्य में पूर्व में बताया गया है कि समय रहते व्यक्ति, समय के साथ व्यक्ति प्रतिदिन ये क्रियाएं करता है, तेल मर्दन करने के साथ साथ जो अपने गले पे, अपने होठों पे या अपने दांतों पे तेल तेल का जो मालिश करता है या तेल लगाता है, तो उससे ये फायदे हैं कि होठ नहीं पड़ते हैं और दांतों का जो गिरना है समय पूरा वो बिल्कुल भी नहीं होता है। दृढ़ मूला च भवन्ति, और आपके जो दंत हैं, आपके जो दांत हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, उनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। दृढ़ मूला, जड़ें, दृढ़ जड़ें जिसकी हैं मजबूत, ऐसे दांत आपके बनते हैं। तो यहाँ पर है, अस्य न च कंठ शोषस्यात् न ओष्ठयो स्फुटनात् भयम्, दंता च क्षयम् न यान्ति दृढ़ मूला च भवन्ति हि, मुखे तेल मर्दनेन कंठ न परिशुष्यतु। तो यहाँ पर कहा गया जब मुख पर जो तेल की मालिश करते हैं उससे, मुखे तेल मर्दनेन, मुख पर तेल की मालिश करने से कंठ न परिशुष्यति ही, जो आपका कंठ है वो शुष्क नहीं होता है। ओष्ठयो स्फुटनात् भीति न भवति, होठों के फटने का डर भी कम हो जाता है। तेल प्रयोगेण च दंतानां मूलानि दृढानि भवन्ति, तेल के प्रयोग से आपके जो दांत हैं उनकी जो जड़ें हैं उनके जो मूल हैं वो भी दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं। तेज बाल्यकाले एव न विनश्यति, बाल्यकाले का तात्पर्य है समय पूर्व, यहाँ पर यह नहीं है कि बचपन में बाल दांतों का गिरना है। बाल्यकाल शब्द का यहाँ पर अगर हम अर्थ ग्रहण करें श्लोक के संदर्भ में, तो बाल्यकाल का तात्पर्य है समय से पूर्व ही दांतों का गिर जाना। हाँ, तेज बाल्यकाले एव न विनश्यति, तो समय पूर्व बाल जो आपके दांत हैं वो विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात गिरते नहीं हैं। अतः मुखे दंतेषु च सर्प, अतः मुखे दंतेषु च सरसप तेलाभ्यंगेन नित्यमेव करणीय है। और यहाँ पर ये बताया गया कि इसीलिए मुख में और दांतों में जो तो सरसों का जो तेल है नित्य रूप से उसका प्रयोग करना चाहिए। दंतई मानवश्य न केवल सेवा भवती अभी तो भोजने तू तेसाम उपयोग है प्रशंसनीय एव, यहाँ पर बताया गया है कि चूंकि हम ऐसा प्रयोग करके हम सरसों का तेल जो दांतों पे लगाने से अगर उनके दृढ़ उनकी जड़ें मजबूत होती हैं तो ये करना चाहिए, क्योंकि दांतों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये केवल हमारी शोभा ही नहीं बढ़ाते हैं, शोभा तो बढ़ाते बढ़ाते हैं, अगर दांत सही हैं तो दिखने में आपका लुक तो आपका अच्छा होता ही है, शोभा तो आपकी बढ़ती है। लेकिन जो जरूरी चीज़ है, जो जीने के लिए जरूरी चीज़ है, भोजन ग्रहण करना, उसके लिए भी दांतों का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है दंतई मानवश्य न केवल शोभा बहुती अभी तो भोजने तू तेसाम उपयोग है प्रशंसनीय एव, जो भोजन करने में भी उनका उपयोग बहुत प्रशंसनीय है, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर शिक्षार्थियों कुछ व्याकरण के बिंदु हैं जिन पर भी हम साथ साथ चर्चा करते चलते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ पद हैं जिनका हम संधि विच्छेद देखते हैं, स्नेह आद्र, स्नेह आद्र है ये एक पद है, स्नेह धन आद्र है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शिक्षार्थियों स्नेह में जो अंत में अ है और आद्र में प्रारंभ में जो आ है, अ धन आ, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, स्नेह आद्र, स्नेह धन आद्र है, स्नेह आद्र। दूसरा जो पद है शिक्षार्थियों चाश्य, च धन अश्य, यहाँ पर भी जो च में जो अ है, च में जो अ है धन अश्य, अश्य जो पद है उसमें जो अ है प्रारंभ में, आदि में जो अ है, तो इस यहाँ पर भी शिक्षार्थियों दीर्घ संधि हुई है, अ धन अ बराबर आ, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि हुई है। दूसरा जो पद है शिक्षार्थियों विशेषेण अभिवर्धते, ये संधि पद है, विशेषेण, विशेषेण अभिवर्धते, विशेषेण धनम अभिवर्धते, विशेषेण अभिवर्धते। नोष्ठयो न ओष्ठयो, न धन ओष्ठयो, यहाँ पर अ धन ओ बराबर औ, खालित्यम न, खालित्यम न, तो यहाँ पे मैं है वो व्यंजन रूप में अनुस्वार उसका होता है, खालित्यम न। क्षेम यान्ति ही, क्षेम यान्ति, यहाँ पर भी क्षेम में जो अंत में जो मैं है, आधा जो मैं है वो अनुस्वार को प्राप्त करता है। और दृढ़ मूलाश्य, दृढ़ मूलहा धन च, दृढ़ मूलाश्य, यहाँ पर जो दृढ़मूला अंत में जो विसर्ग है वो सचुत्व को प्राप्त करता है, उसका क्षय होता है, तो दृढ़मूलाश्च है। दीर्घश्य दीर्घ है, धनच है, यहाँ पर भी सच जो विसर्ग है उसका क्षय हुआ है। स्फुटनाथ धन भयम, तो यहाँ पर जो तय है, जो स्फुटनाथ में तय है, उस तय का यहाँ पे दय हुआ है, तृतीय वर्ण यहाँ पे हुआ है उसका। स्फुटनाथ भयम स्यात चह, यहाँ पर भी चय वर्गीय योगे तय वर्गे तु चय वर्ग जायते, यहाँ पर ये सूत्र इस रूप में हुआ है प्रयोग। और अगर सामासिक पद देखें शिक्षा, तो यहाँ पर इन श्लोकों में बहुत सारे सामासिक पदों का प्रयोग हुआ है। सिर है सूलम, ये समस्त पद है, सिर है सूलम, इसका अगर विग्रह करें तो शीर्षी सूलम, और यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। सिर है कपाला नाम, इसका अगर हम विग्रह रूप में करें समस्त पद का तो शीर्ष है कपाला नाम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग है। कंठ शोष है, कंठस्य शोष है, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष है। स्नेह आद्र शीर्षः, स्नेहेन आद्रम शिर यश तस्य स्नेह आद्र शीर्ष है, यहाँ पर भवीरी समास का प्रयोग है शिक्षार्थियों। और दृढ़मूलः, दृढ़म मूलम ये शाम तेह, ये भी जो पद है वो भवीरी समास का ही पद है। दृढ़मूलः यहाँ पर भी भवीरी समास है, दृढ़म मूलम ये शाम तेह, जिस तरह से स्नेह आद्र शीर्षी पद भवीरी समास का है, स्नेहेन आद्रम शिर यश तस्य भवीरी समास। तो यहाँ पे कुछ क्रियापद भी हैं शिक्षार्थियों, जैसे जायते क्रियापद है, ये प्रयोग हुआ है। अगर हम देखें तो जायते पद बनता है, यहाँ पर जन धातु है और ये लट लकार का प्रयोग है, प्रथम पुरुष एक वचन है। अभिवर्धते ही, अभि धनवृद्ध, ये भी प्रथम एक वचन का प्रयोग है। प्र पतंति ही, प्र उपसर्ग है, यहाँ पे जो उपसर्ग हमारे 22 उपसर्ग होते हैं, पर परा अपसम अनु अवनिशनेर दूस दूरवी आंगनी अधि अपि अतिसु, इनमें से जो प्र है वो एक उपसर्ग है, जो कि जो पथ धातु है उसके पूर्व में उसका प्रयोग हुआ है, और यह भी लटलकार का बहुवचन का पद है। पतंती, प्रपतंती, परपतती, तो इस तरह से जो रूप चलते हैं, प्रपतंती ये बहुवचन का रूप है। भवंती, यहाँ पर जो भवंती पद है उसके मूल में भू धातु है, और ये भी लटलकार का प्रथम बहुवचन का प्रयोग है। यांती, यहाँ पर या धातु का रूप है, ये या धातु में लटलकार प्रथम एकवचन से यांति रूप बनता है। श्यात, श्यात में देखे शिक्षार्थियों, तो यहाँ पर अस धातु का प्रयोग हुआ है, और ये विधिलिंग का प्रयोग है, श्यात होना चाहिए, करना चाहिए, इस तरह से चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग हुआ है, ये प्रथमा एक वचन का प्रयोग है यहाँ पर भी शिक्षार्थियों। तो जो प्रथम जो तीन श्लोक हम लिए हैं इस पाठ में, जो प्रथम अंश में जो तीन श्लोक दिए हैं शिक्षार्थियों, उनका अगर मुख्य रूप से हम सार रूप में बात करें तो हम देखते हैं कि नित्यम तेल मर्दनेन शिरोवेदना न जायते, प्रतिदिन तेल के मर्दन करने से, तेल की मालिश करने से सिर में पीड़ा नहीं होती है। केशा कृष्ण बहुंती, जो आपके बाल हैं वो काले होते हैं। केशा नाम मुराने दृढ़ानि बहुंती, जो आपके बाल हैं उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं। तेल मर्दनेन कंठ न शुष्यति, तेल की मालिश करने से जो आपका कंठ है वो शुष्क नहीं होता है। ओष्ठयो स्फुटनाथ भयम दूरी भवति, जो आपके होठों के फटने का भय है, डर है, वो भी दूर हो जाता है। दंताश्च दृढ़मूला बहुंती, और जो आपके दांत हैं उनकी जड़ें हैं वो भी मजबूत होती हैं, दांतों के जो मूल हैं वो भी मजबूत होते हैं, अर्थात जो मसूड़े हैं वो भी मजबूत होते हैं। नित्य सिर, यहाँ पर यही है कि नित्य सिर पर तेल लगाने के जो फायदे बताए गए हैं, तो शिक्षार्थियों हम चाहते हैं कि आपकी जो उम्र है अभी, जिस व्यय में आप हो उसी व्यय से अगर आप शुरू करते हो प्रतिदिन तेल की मालिश करना, और विशेषकर मुख्य रूप से सरसों के तेल की यहाँ बात की गई है, लेकिन जो भी तेल उपलब्ध होता है घर में, जो भी उपलब्धता है उसके आधार पर जिस किसी भी तेल से आप मालिश करें, तो प्रतिदिन अगर आप ऐसा करते हैं तो जो इन श्लोकों में जो फायदे बताए गए हैं वो आप अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपके इस तरह के फायदे होंगे। और आगे का शिक्षार्थियों श्लोक हम लेते हैं, यहाँ पर भी पुनः तेलाभ्यंगस्य अन्येषां लाभानां विषये द्वितीय अंश संबोधामः, जो दूसरा अंश है इसमें भी, पाठ का जो दूसरा अंश है उसमें जो श्लोक है उसमें भी शिक्षार्थियों, तो तेल मर्दन है मुख्य रूप से इस पाठ में, तेल की मालिश है उसके विषय में बताया गया है। तो चौथा श्लोक हम लेते हैं शिक्षार्थियों, यहाँ पर है इंद्रियाणि प्रसिद्धन्ति सुतक भवति च आननम निद्रा लाभ सुखम च स्यात् मूर्धनि तेल निसेवनात्। इसका अनुमान शिक्षार्थियों देखते हैं, मूर्धनि तेल निसेवनात् इंद्रियाणि प्रसिद्धन्ति आननम च सुतक भवति सुखम निद्र लाभ च स्यात्। इसकी व्याख्या अगर हम देखें शिक्षार्थियों, तो अस्तु अस्य पदस्य भावार्थ विस्तरेण किम भवन्त जानन्ति यत् तैल निसेवनात् इंद्रियाणि कीदृशानि भवन्ति, तेल लगाने से, तेल की मालिश करने से जो इंद्रियां हैं वो किस तरह की होती हैं। तेर निषेवनात् इंद्रियाणि प्रसन्नानि सक्रियानि दृढ़ानि च भवन्ति। जो हमारी इंद्रियां हैं, यहाँ पर तेल के मालिश जो शरीर के अन्य इंद्रियां हैं, हाथ हैं, पैर हैं, यहाँ की शिक्षार्थियों में बात हो रही है। तो जो हमारी ये इंद्रियां हैं, ये तेल की मालिश करने से किस तरह की होती हैं, किस तरह से प्रतीत होती हैं? प्रसन्नानि सक्रियानि, प्रसन्नानि का तात्पर्य भी यही है कि ठीक रहती हैं वो, सक्रियानि सक्रिय रहती हैं, हमेशा चुस्त, हमारा शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। जब हमारी इंद्रियां चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, हमारी इंद्रियां सक्रिय हैं, तो हमारा शरीर स्वमेव भी चुस्त रहेगा। तो यहाँ इस श्लोक में ये फायदा बताया गया। दूसरा है आननम किदर्शन भवति, आननस्य त्वक् कोमलम कांतियुक्तम च भवति। शिरसि तेल मर्दनेन जो अन्य लाभ बताए गए हैं, शिरसि तेल मर्दनेन अन्य के लाभ निद्रा प्राप्ति भवति सुखम अर्थात सरलतया शीघ्रतया एवं निद्रा आयाती ही। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो बताया गया शिक्षार्थियों कि तेल के मर्दन करने से जो आपकी इंद्रियां हैं प्रसिद्धंती वो ठीक रहती हैं, वो प्रसिद्ध रहती हैं, प्रसिद्धंती रहती हैं, अर्थात प्रसन्नानी। प्रसन्नानी का तात्पर्य है कि कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि कभी कभी हम स्वमेव भी सुख का अनुभव करते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम स्वमेव भी बिना 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 किसी खुशी की वजह के हम खुश रहते हैं। तो अगर हम प्रतिदिन ऐसा करते हैं, हमारी इंद्रियों पर तेल मालिश करते हैं, तो हमें इस तरह का अच्छा अनुभव होता है। सुत्तक भवति शिरसि तेल अभ्यंगेन इंद्रियाणि प्रसन्नानि सक्रियानि च भवन्ति आननस्य कांति वर्धते। और दूसरा जो आपकी आनन है, जो आपका मुख है, उस पर भी कांति रहती है। जब हम तेल की मालिश करते हैं तो हमेशा हमारे जब शरीर हमारा सक्रिय होता है तो स्वयं ये भी, जब हमारा शरीर सक्रिय है, हमारा शरीर एक्टिव रहता है इस तरह से, तो हम खुशी का अनुभव करते हैं, आंतरिक खुशी का अनुभव करते हैं। और जब आंतरिक खुशी हमारी आती है तो हमारे चेहरे पे एक इस तरह से आभा के रूप में हमें दिखती है। तो यहाँ पर यही कहा है कि आननस्य कांति वर्धते, आनंद की जो आपकी कांति है वो बढ़ाता है तेल मर्दन करना। कृत्रिम उपकरण नाम च आवश्यकता एवं न भवती। और यहाँ पर भी कहा गया है कि जो देखते हैं कि वर्तमान में हम अनेक तरह को, हमारा चेहरा सुंदर दिखे, हम सुंदर दिखे, हमारी त्वचा सुंदर दिखे, तो हम देखते हैं हम बाजार से बहुत सारी क्रीम्स ले आते हैं, महंगे महंगे दामों की क्रीम्स। अगर आप देखेंगे तो 5 ग्राम की, 10 ग्राम की और 100 रुपये, 150 रुपये, तो आप देखिए कितना महंगी क्रीम वो है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भौतिक साधन हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं, जबकि ये चीज़ें अगर हम तेल नियमित रूप से तेल मर्दन करें तो इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं रही। जो कृत्रिम उपकरण है, कृत्रिम उपकरण का तात्पर्य यह भी है कि बहुत बार लोग देखते हैं कि अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आजकल कृत्रिम चीज़ें आ गई हैं कि अपनी सुंदरता बढ़वाते हैं लोग, अपने जो अंग हैं उनको तोड़ फोड़ के उनका रिप्लेस करके या जिस किसी भी माध्यम से अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रयोग करते हैं। लेकिन प्राचीन साहित्य की जो बातें हैं वो कहती हैं कि इन सब की आवश्यकता नहीं है। जो आधुनिक समय में हम जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम समय रहते जो चीज़ें कही गई हैं उनको, उनका अनुकरण करें, उनको माने। तो यहाँ पर इस श्लोक में कहा गया है कि नित्य रूप से तेल मालिश करने से जो आपकी इंद्रियां हैं वो सिद्ध रहती हैं, सक्रिय रहती हैं, और आपका जो चेहरा है, आपका मुख है, उस पर हमेशा कांति बनी रहती है। और महत्वपूर्ण चीज़ जो इस समय की है, सुखपूर्वकम निद्रा भवति, आपकी सुखपूर्वक नींद पूरी होती है, आपकी अच्छी नींद पूरी होती है, जो कि वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। आज देखते हैं कि जो जीवन शैली है उसमें सबसे बड़ी समस्या है, लोग तनाव में रात भर नींद ही नहीं आती उनको, या फिर नींद की गोलियां खाते हैं। जो स्वयं जो ऐसी चीज़ है, स्वैच्छिक चीज़ है, जो नींद, जब आप दिन भर काम करते हैं, थके हारे जाते हैं, तो स्वयं नींद आनी चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं आती है। दिन भर काम करने के बाद भी लोगों में इतना मानसिक तनाव है कि उनको नींद आती ही नहीं है। तो वो उस बात के लिए भी यहाँ बताया गया है कि सुखपूर्वकम निंद्रा बहुत ही, और कैसे, जब आप जिस तरह की जो बताई गई है कि सिर की मालिश करना, हमारी इंद्रियों की मालिश करना, मुख की मालिश करना, होठों पे तेल लगाना, दांतों पे तेल लगाना, कंठ पे तेल लगाना, इस तरह से अगर आप करते हैं तो शरीर, आपका जो शरीर है वैसे स्वस्थ फील करेगा, सक्रिय फील करेगा। और जब आप दिन भर में काम करते हैं या इधर उधर जो भी कार्य करते हैं, उसके बाद में जब आप सोने जाते हैं तो आपको अपने आप नींद आ जाएगी। ये भी इसका एक फायदा बताया गया है। आगे का शिक्षार्थी हम श्लोक देखते हैं। यहाँ पर भी जो तेल मर्दन है उसी के अन्य लाभों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर है सुस्पर्श यो चित्तांग, सुस्पर्श उपचित अंग, सुस्पर्श यो चित्तांग च बलवान प्रिय दर्शन है भवति ही। यहाँ पर सुस्पर्श यो पचितांगश्च बलवान प्रिय दर्शन है भवत्याभ्यंग नित्य प्रिय दर्शन अल्पजरा एव च भवति ही। तो यहाँ पर है भवति अभ्यंग नित्यत्वात् नरः अल्पजरा एव च है। यहाँ कहा गया है, इसका अगर अन्वय शिक्षार्थियों हम, जो श्लोक है, सुस्पर्शो पचितांगस्य बलवान प्रियदर्शनः भवति भवति अभ्यंग नित्यत्वात् नर अल्पजर एव च है। इसका हम अगर अन्वय करें, अभ्यंग नित्यत्वात् नर है, सुस्पर्शो पचितांग बलवान प्रिय दर्शन है, अल्पजर एव च भवति ही। सुस्पर्शो चितांग पदस्य को अर्थ है, सुस्पर्श है धन, उपचितांग सुखेन स्पर्शानी कोमलानी उपचितानी दृढ़ानी अंगानी यशस है। सुस्पर्शो चितांग क्या भवति, यह नित्यम तैलाभ्यंगम करोति, जो नित्य रूप से तेल की मालिश करता है, नित्यम तेल मदनेन अंगानी कोमलानी भवन्ति, नित्य रूप से तेल का मर्दन करने से जो आपके अंग हैं, आपके जो बाह्य इंद्रियां हैं, आपके हाथ हैं, हाथों की जो अंगुलियां हैं या जो भी आपका शरीर है वो कोमल होता है। त्वचा सुस्पर्श योग्य बहुत ही, जो आपकी त्वचा है उसमें भी कांति रहती है, उसका भी स्पर्श बहुत कोमल पूर्वक कोमल स्पर्श वाली त्वचा आपकी रहती है। सहन है बलवान कांतिमान से बहुत ही, और निरंतर रूप से अगर आप तेल मर्दन करते हैं, तेलाभ्यंग करते हैं, तो ऐसा पुरुष यहाँ कहा गया कि सह न रह बलवान कांतिमान च होति, तो ऐसा व्यक्ति ही बलवान भी होता है और कांतिमान भी होता है, अर्थात उसके शोभायमान भी होता है, उसका शरीर है, उसके जो इंद्रियां हैं वो दिखने में सुंदर लगती हैं, जो आपकी जो शोभा है वो बढ़ती है। और अल्पजर पदस्य, यहाँ पर अल्पजर है, जर का तात्पर्य होता है शिक्षार्थी उम्र आयु, तो यहाँ पर अल्पजर है पदस्य को अर्थ है, अल्प अल्पा जरा यशस्य अर्थात अल्पवृद्ध है, यहाँ पर तात्पर्य है अल्पवृद्ध का तात्पर्य, जर का तात्पर्य वृद्धावस्था उम्र का बढ़ना जर है, तो जो वृद्धावस्था है यहाँ प्रयोग क्या है अल्प जर है, जो आपका जो उम्र है वृद्धता है वो कम होती है, अल्पवृद्ध है। अर्थात यह नर नित्यम तेल मर्दनम करोति स सुंदर भवति दर्शनीय भवति स शीघ्र वृद्ध न भवति, अर्थात वो जल्दी बूढ़ा भी नहीं होता है, या जल्दी ही जैसे उम्र है वो तो बढ़ती है, लेकिन आपका शरीर जिस तरह शोभायमान है दिखने में ऐसा नहीं लगता कि आप इस उम्र के हो। बहुत बार हम देखते हैं किसी किसी व्यक्ति की उम्र तो काफी अधिक होती है लेकिन दिखने में ऐसा नहीं लगता, बहुत कम अल्प उम्र के लगते हैं, अल्प जरह लगते हैं। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आप नित्य तेल मर्दन करते हैं तो आप अल्प जरह रूप से दिखते हैं, आप जिस उम्र के हैं उससे भी कम उम्र के दिखते हैं। प्राय लोग कोशिश करते हैं, आप अभी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो भौतिक चीजें हैं या इस तरह के भौतिक उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके माध्यम से अपनी उम्र को छुपाने के लिए प्रयास कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक नैसर्गिक साधन है, जब हमारे ज्ञान में परंपरा में बताया गया है नैसर्गिक बातें, तो क्यों ना हम उन्हीं बातों का प्रयोग करते हुए जो ये बात है, हम क्यों अनर्थक चीज़ों को हम प्रयोग में लाएं, जबकि अगर हम नियमित रूप से जो बातें कही गई हैं, जो तेल मर्दन की बातें कही गई इन्हीं का प्रयोग करें। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों अगर भाव रूप में हम देखें तो यही कहा गया कि यह है नर है प्रतिदिनम तैलाभ्यंगम करोति तस्य शरीरम कोमलम पुष्टम च भवति स बलवान सुंदर शरीर च जायते सह विलंबेन एव वृद्ध भवति, अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन तेल की मालिश करता है तस्य शरीरम उसका शरीर कोमलम पुष्टम च भवति, उसका शरीर कोमल अर्थात शोभायमान और पुष्ट अर्थात स्वस्थ होता है, सह बलवान सुंदर शरीर च जायते, उसका शरीर बलवान अर्थात क्रियाशील और सुंदर शरीर वाला होता है, स विलंबेन एव वृद्ध भवति, और वो बहुत देर से बूढ़े होते हैं। तात्पर्य यह है कि उन पर उम्र का जो असर है वो बहुत देर बाद में दिखता है या दिखता नहीं है। आगे का श्लोक हम देखते हैं शिक्षार्थियों, जायते सौ कुमारियम च बलम स्थैर्यम च पादयो दृष्टि प्रसादम लभते मरुतः च उपसाम्यति ही। अगर हम अन्वय करें शिक्षार्थियों श्लोक का, पादयो सौ कुमारियम बलम स्थैर्यम च जायते ही दृष्टि प्रसादम लभते मरुतः च उपसाम्यति ही, अर्थात पादयो तैलाभ्यंगात किम भवति, पादयो सौ कुमारियम कोमलता भवति ही, जो आपके पैर हैं उन पर अगर आप तेल मालिश करते हैं तो जो आपके पैर हैं वो तेल की मालिश करने से कैसे होती हैं, किम भवति सुकुमारियम कोमलता भवति, अर्थात उनमें कोमलता रहती है, बलम शक्ति स्थैर्यम स्थिरता च भवति, बल बढ़ता है आपकी शक्ति बढ़ती है और स्थैर्य बढ़ता है, यथा वृक्ष मूले जल संचयन समग्र वृक्ष पत्र शाखा दिव्य से ऊर्जा लभते तथा पाद मूल्य तेल प्रयोगेन सर्वे स्नान पोषण प्राप्नुवन्ति ही। यहाँ पे एक उपमा के माध्यम से बताया गया है, रूपक के माध्यम से बताया गया है कि जिस प्रकार से हम वृक्ष की जड़ों में पानी का सिंचन करते हैं, वृक्ष को पानी देते हैं, तो वृक्ष के जड़ों में पानी देने से जिस तरह से वृक्ष की शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, सभी में जो उसका हंटर पता लगता है, सभी में जो जड़ में पानी देते हैं तो पौधा स्वस्थ रहता है और इस तरह से शोभायमान लगता है। तो उसी तरह से यहाँ कहा गया है कि यथा वृक्ष मूले जल संचयन, समग्र वृक्ष पत्र शाखा दिव्य से ऊर्जा लभते, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ों में पानी देने से उसके सभी पेड़ के जो सभी भाग हैं वहां पर ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी तरह से पाद मूले तेल प्रयोग, पैरों के मूल में अर्थात पैरों के जो एडी हैं वहां पर, या पैरों के जो अंत में जो हम जहां पर अगर मालिश करेंगे तो उससे हमारा जो संपूर्ण स्नायु तंत्र है, हमारे जो शरीर का जो स्नायु तंत्र है, उस सभी को पोषण मिलता है अर्थात उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर है अन्य को लाभ है, पादयो तैल निषेवणात् दृष्टि अपि निर्मला प्रसन्ना भवति। दूसरी बात है कि पैरों में तेल लगाने से, पैरों के तलुओं में तेल लगाने से आपकी दृष्टि भी बढ़ती है, आपकी नजर में भी वृद्धि होती है अर्थात आपकी आंखें भी स्वस्थ रहती हैं। वायु जनित रोगा अपि उपशम्यति शांता भवन्ति। और जो देखते हैं कि वायु जनित कुछ रोग हैं जिससे हमारी आंखों में इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं तो वो भी दूर रहती हैं। तो यहाँ पर भाव रूप में हम कह सकते हैं शिक्षार्थियों, पादयो तैलमर्दनेन पादो कोमलो बलयुक्तो दृढ़ो च भवता है, नेत्र ज्योति वर्धते है, वात विकारणाम च उपशम्यम नाश जायते, अतः तैलमर्दनम तो नित्यम कुर्यात्। तो यहाँ पर कहा गया है शिक्षार्थियों कि पैरों के तलवों में तेल लगाने से, तेल की मालिश करने से जो तलवे हैं वो तो कोमल तो रहते ही रहते हैं, बलवान युक्त भी होते हैं, और हमारे शरीर का जो संपूर्ण स्नायु तंत्र है, जो हमारे संपूर्ण की वहाँ तक भी इसकी ऊर्जा जाती है और उससे जो वो सब स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही जो हमारी आँखों की रोशनी है वो भी बढ़ती है, और जो कुछ इस तरह के रोग होते हैं जो आँखों के रोग हैं, कई बार आँखें आ जाना, ऐसे बच्चों में विशेषकर हम देखते हैं जब छोटी उम्र के होते हैं तो इस तरह की वात जनित बीमारियाँ हो जाती हैं, लेकिन अगर हम तेल का मर्दन करें पैरों के तलुओं में तो इस तरह की बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो शिक्षार्थियों मुख्य रूप से हम देखते हैं कि इस पाठ में मुख्य रूप से जो तेल की मालिश है, तेल मर्दन है, तेल सिंचन है, उसके बारे में बताया गया है और उनके क्या क्या फायदे हैं। तो शिक्षार्थियों आशा है कि जो ये पाठ में जो हम बातें बताई गई हैं, ये पाठ तो आपको परीक्षा की दृष्टि से तो आपने समझ लिया होगा, साथ ही जो अपने जीवन में भी इसका जो क्या उपयोगिता है, आपके जीवन में कितनी उपयोगिता है। तो आशा है जो शिक्षार्थियों आप जो तेल मर्दन है, जो तेल की मालिश करना है, इससे इसको अपने जीवन में भी अपनाएंगे और इससे जो भी फायदे हैं वो भी फायदे आपको होंगे। तो शिक्षार्थियों इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, हमारे घरेलू जो कुछ चीज़ें हैं, जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, हमारे बड़े बूढ़े माता पिता दादा दादी किससे भी हम बात करके भी बहुत सारी ऐसे ज्ञान की बातें हैं, इन सब चीज़ों से भी आप परिचित होते रहिए। आशा है कि जो आज का जो ये पाठ है ये आपके समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। धन्यवाद।